الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا علما. تو اس کلاس میں جو ہم سورہ انبیاء کی ان آیات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم اجتہاد کے موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے. کسی کو پچھلی جو بحث ہوئی ہے، ڈسکشن جو اس کلاس کے اندر ہوئی ہے، تو اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر کے پوچھ لیجئے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب دو مجتہد کسی ایک ہی مسئلے کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جیسے اس میں ہم نے مثال دی تھی کہ نماز کے دوران ہاتھ باندھنے میں سنت کیا ہے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے، ہاتھ باندھنے میں سنت کیا ہے. اب اس کے اوپر امام ابو حنیفہ نے بھی اجتہاد کیا، امام شافعی نے بھی اجتہاد کیا، لیکن دونوں کا نتیجہ جو ہے نا اجتہاد میں وہ مختلف نکلا. امام ابو حنیفہ کا نکلا کہ ناف کے اوپر، یعنی جس کو انگریزی میں بیلی بٹن کہتے ہیں، تو اس جگہ کے اوپر ہاتھ باندھنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ایسے باندھا کرتے تھے نیچے کی طرف قیام کی حالت میں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا اونچا کر کے سینے کے لیول کے اوپر ہاتھ باندھا کرتے تھے نماز کے دوران. تو اب یہ دونوں کا اجتہاد مختلف ہو گیا. تو اب کیا ان دونوں کو صحیح کہا جائے گا، بس زیادہ سے زیادہ ایک کو زیادہ صحیح اور دوسرے کو کم صحیح، یا یہ کہ ایک کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہا جائے گا؟ تو پوری ڈسکشن کے بعد حضرت نے اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا، یہ نکالا تھا کہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کا یہ اجتہاد صحیح نہ ہوا، یعنی نتیجہ اس نے صحیح نہ نکالا، اور اس سے خطا ہو گئی، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی کسی پروسیس میں، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے جو ہے وہ شاید کسی حدیث کو مس کر دیا یا کسی حدیث کی انٹرپریٹیشن اس نے صحیح نہیں کری، تو اس کا نتیجہ غلط نکل آیا، تو پھر اس کو نا ایک اجر ملے گا اجتہاد کی محنت کا، یعنی یہ اجر تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، اور دوسرا اجر جو اصل حکم صحیح تک پہنچنے کا تھا بس وہ نہیں ملے گا، یعنی اس کو گناہ نہیں ملے گا، اس کو اجتہاد کے غلط ہونے پر گناہ نہیں ملے گا. اور جو دوسرا مجتہد تھا جس نے کہ صحیح اجتہاد کر لیا، نتیجہ بھی صحیح نکال لیا، یعنی واقعی نبی علیہ السلام کی سنت وہی تھی جو کہ اس نے نتیجے میں نکالی، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے پھر یہ جو علماء کے درمیان یہ ڈسکشن تھی نا کہ کیا دونوں اجتہادوں کو صحیح کہا جائے گا یا ایک کو صحیح ایک کو غلط کہا جائے گا، تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ بس یہ ایک لفظی سا اختلاف ہے، یہ کوئی حقیقی اختلاف ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجتہدین جو ہے نا، ان میں سے تو چلو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد صحیح تھا، اس کا اجتہاد غلط تھا، لیکن ثواب دونوں کو مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض دونوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ہے. گناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی ناراضگی، ٹھیک ہے. تو چونکہ دونوں مجتہدوں میں سے کسی ایک کو بھی گناہ نہیں مل رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دونوں مجتہدین سے راضی ہیں، خوش ہیں، ٹھیک ہے. تو جب دونوں مجتہدین سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، خوش ہیں، تو اب ان دونوں مجتہدین میں سے، یعنی ان دونوں مجتہدین کے جو فالوورز ہیں، جو ان کی اقتداء کرنے والے ہیں، جو ان کی تقلید کرنے والے ہیں، اقتداء کرنا تقلید کرنے کا مطلب پتہ ہے سب کو نا، فالو کرنا، پیچھا، یعنی ان کی اجتہاد کے اوپر عمل کرنا. ہاں بھی जैसे जो लोग इमाम शाफी को फॉलो करने वाले हैं तो वो नमाज के अंदर सीने के ऊपर हाथ बांधेंगे, ठीक है, मर्दों की बात हो रही है, औरतों ने तो दोनों सूरतों में, इमाम अबू हनीफा के फॉलोइंग औरतें वो भी सीने पर ही हाथ बांधेंगी, और जो इमाम शाफी की फॉलोइंग औरतें हैं, फॉलोअर औरतें हैं, वो भी सीने पर ही हाथ बांधेंगी। तो मसला यहाँ पे औरतों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो सिर्फ मर्दों की बात हो रही है। तो अब जो मर्द सीने पे हाथ बांधते हैं तो उनको भी कोई गुनाह नहीं मिलेगा, उनको भी सवाब ही मिलेगा, नमाज पढ़ने का पूरा सवाब उनको मिलेगा। और जो लोग जो है नाफ के ऊपर हाथ बांध करके नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि वो इमाम अबू हनीफा के इश्तेहाद को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको भी नमाज का पूरा सवाब मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक जो मसला था, इसके ऊपर कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बिला तकल्लुफ पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक सवाल तालिब इल्म के जहन में ये हो सकता है कि ये जो दोनों मुज्तहिदीन जो थे उन्होंने नेकनीयती के साथ, है ना, नेकनीयती के साथ कोशिश करी, अपना इल्म इस्तेमाल किया और जो है वो यानी तहकीक करके किसी नतीजे पे पहुंचे। अब एक को जो है वो अल्लाह ताला ने उस मामले की फहामता फरमा दी, ठीक है, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस वाक़े के अंदर फहामता फरमा दी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद जो है वो ज्यादा सही हो गया। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फहम नहीं अता फरमाई तो दाऊद अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद जो है वो कम सही हो गया। उसी तरीके से इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी के दरमियान भी किसी एक को अल्लाह ने फहम अता फरमा दी तो उसका इज्तिहाद जो है वो सही हो गया, और किसी दूसरे को अल्लाह ने फहम नहीं अता फरमाई तो उसका इज्तिहाद जो है वो गलत हो गया, है ना। तो जिसको अता फरमाई उसको दो सवाब मिल गए, जिसको अता नहीं फरमाई उसको एक सवाब मिला, दो नहीं मिले। तो इसके ऊपर अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि उसका क्या कसूर था, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया, गुनाह तो दोनों में से किसी ने भी नहीं किया, तो एक को दो सवाब मिले एक को एक सवाब मिला, तो जिसको एक मिला उसका क्या कसूर था, ठीक है ना, कि उसको दो ना मिले एक मिला। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करे, मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चे में किसी को ये सवाल कोई समझा रही हैं, आजकल बच्चे भी ये सवाल करते हैं, 12-13 साल के जो बच्चे हो जाते हैं ना, तो अगर वो किसी दीनी डिस्कशन में शामिल हों, इवन स्कूलों के अंदर, मुस्लिम स्कूलों के अंदर इस तरह की दीनी डिस्कशंस होती हैं, ठीक है, तो अगर ये कोई बच्चा आकर के आपसे सवाल करे तो आप इसका क्या जवाब देंगे? किसी ने यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि when the argument is that follow one imam at a time or follow all imams at the same time, then what to do? इस argument के ये पिछली क्लास के आखिर में इसका जवाब हो चुका है, ठीक है, तो इस वजह से हम खुद जवाब देने की बजाय आप ही से इसका सवाल करते हैं, कोई और आपने से जवाब दे। पहला जो सवाल था उसका तो जवाब देना कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि भाई उसका क्या कसूर कि उसको दो नहीं मिल रहे एक, हालांकि नीयत उसकी भी सही थी, है ना, तो नीयत जब दोनों की सही थी और मेहनत दोनों ने करी तो उसको दो सवाब इसको एक सवाब, ये तो नाइंसाफी हो गई भाई, है ये तो गलत बात लग रही है कि उसको दो मिल रहे हैं इसको एक मिल रहे हैं, हालांकि दोनों की नीयत सही थी और दोनों को दोनों ने मेहनत करी थी, ठीक है, तो इसका क्या जवाब देंगे? पहले इसका जवाब दे लें आप, फिर उसके बाद आपने जो ये सवाल लिखा है तो उसका पूछ लें आपने से किसी से। जी क्या जवाब देंगे भाई, किसी को दो मिल गए किसी को एक मिला, कसूर तो दोनों का नहीं था, नियत दोनों की अच्छी थी, मेहनत दोनों ने करी थी, तरीका भी दोनों का सही था, फिर एक को एक सवाब मिला दूसरे को दूसरा सवाब मिला, क्यों भाई, दोनों को दो मिलने चाहिए थे। जवाब दिया किसी ने कि क्योंकि वो हक बात तक नहीं पहुंच पाया, तो भाई वो पाया ना, कोशिश तो करी ना उसने, तो हमारे दीन के अंदर तो कोशिश के ऊपर सवाब मिलता है, नतीजे के ऊपर तो वैसे भी मसला नहीं है। बात आपने पहले सुनी होगी शायद, अंदर कभी गौर पहले से और क्या हो बात के ऊपर, कोशिश के ऊपर सवाब मिलता है ना हमारे यहाँ, और तरीके के ऊपर सवाब मिलता है, तरीका आपका सही था, कोशिश आपकी सही थी, कोशिश आपने करी थी, नियत आपकी सही थी, सवाब मिल गया, नतीजे पे तो थोड़ी सवाब मिलता है हमारे यहाँ। तो यहां पर नतीजे पे क्यों सवाब मिल रहा है? जी भाई, वो सही बात पर नहीं पहुंच पाया तो इसमें उसका तो कसूर नहीं है ना, वो तो अल्लाह ने उसको फहम ही नहीं अता फरमाई, तो उसका क्या कसूर है इसके अंदर? अल्लाह को बताना था कि सही है दोनों के तरीके, और बिना लड़े लड़ाई झगड़े के अदब के साथ फॉलो किया जा सकता है कोई भी मसाइल। जवाब तो आपने बड़ा जबरदस्त दिया। इन्होंने जो जवाब लिखा है, सब इसको पढ़ने की जरा कोशिश करें, रोमन के अंदर है। ठीक, इन्होंने लिखा है अल्लाह को बताना था कि सही हैं दोनों के तरीके, और बिना लड़ाई झगड़े के अदब के साथ फॉलो किया जा सकता है कोई भी मसला, कोई भी मसाइल। समझ में आया क्या जवाब है इनका? अभी समझाते हैं इंशाल्लाह, जब तक दूसरों के जवाब पढ़ते हैं। कि अल्लाह ताला ने सबको हिकमत अलग अलग दर्जे पर अता की है, इस वजह से मेहनत के बावजूद वो नताइज हासिल नहीं होते, ये सब अल्लाह की मर्जी से है। ठीक है, या आपने सही बात लिखी है, सब अल्लाह की मर्जी से है, तो इस वजह से हम तो कह रहे हैं कि भाई सवाब में उसको तो कमी हो गई ना, मुसालहत की वजह से सवाब ज्यादा मिला था, मुसालहत की वजह से सवाब ज्यादा, मुसालहत की वजह से नहीं। हम अब दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर कोई आपसे इस तरह का सवाल करेगा ना, ठीक है, तो उसका जवाब ये होगा कुरान मजीद की एक आयत। ठीक है, कुरान मजीद की एक आयत इसका जवाब है, वो क्या है? दोनों को कोशिश का ही सवाब मिल रहा है, इजाफी तो अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाते, ज़ालिका फज़लुल्लाही युतीही मन यशा। ठीक है ना, बिल्कुल यही जवाब है इसका। ठीक है ना, ज़ालिका फज़लुल्लाही युतीही मन यशा, ये अल्लाह ताला का फजल है जिसको चाहे अता फरमा दे। देखें बेशक अल्लाह ताला का अदल इंसाफ सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन यहां पर आप किसी दुनिया के जज की बात नहीं कर रहे, दुनिया के किसी मुनसिफ की बात नहीं कर रहे कि भाई वो पाबंद है ना, वो उसूलों का पाबंद है। ठीक है, यहां पर हम अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला जो है ना, जहां पर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर अदल को रखा हुआ है कि हाँ भाई मैं जुल्म किसी के ऊपर नहीं करूंगा। ठीक है ना, वहीं पर अल्लाह ताला की शान भी है, अल्लाह ताला की अजमत भी है, राइट, अल्लाह ताला के फैसले, अल्लाह ताला की अजमत, भाई वो कोई थोड़ी खत्म हो गई, अल्लाह ताला की अजमत तो अल्लाह की अजमत है ना, उसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, ये तो अल्लाह का फजल है जिसको चाहे अता फरमाए। ठीक है ना, कोई अल्लाह ताला से जो है ना वो जराह नहीं कर सकता। अब क्या है इसके अंदर हिकमत कि अल्लाह ने उसको दो अता फरमाए, अल्लाह ने इसको एक अता फरमाया? हमारी इतनी छोटी सी जो अकल है ना, निक्की सी अकल, ठीक है ना, हमारी अकल की तो कोई हैसियत ही नहीं ना, हमारी अकल में अल्लाह ताला की हिकमतें आ जाए, ये कैसे हो सकता है? हमारी अकल की हैसियत कितनी है, ठीक है ना, उसके अंदर अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह को समझते हैं थोड़ा बहुत भी? कौन है अल्लाह ताला? है रब्बुस समावाति वल अर्ज, जो कि आसमानों के अंदर जितनी मखलूक है उसको भी पालने वाला है, और जमीन के अंदर जितनी भी मखलूक है, समझते हैं ना मखलूक क्या चीज होती है, चूंटियां वो भी अल्लाह की मखलूक है, सिर्फ इंसान अल्लाह की मखलूक नहीं है, है ना, जिन वो भी अल्लाह की मखलूक है, और जो बैक्टीरिया है जो कि माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है, जो वायरसेस हैं जो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह तो वो है जो कि इन सबको पाल रहा है, अब वो कैसे पाल रहा है, क्या उसका तरीका है, हम समझ सकते हैं इन चीजों को? हमारी अकल में आ जाएंगी ये सारी चीजें? आ ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह की हिकमत जो है ना वो हम समझ जाएं, ये हमारे हमारे लिए मुमकिन नहीं है। छोटी मोटी दो चार चीजें समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये को थोड़ी है कि सब कुछ समझ गए। ठीक है ना, तो इस वजह से ना हमें अपनी हकीकत याद रखनी है। ठीक है ना, कि अल्लाह की जो मर्जी अल्लाह ताला करते हैं, हमें ना समझ में आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में उसका जवाब दे दिया। और इसके ऊपर बच्चों की क्लास का एक वाकया बच्चों को बताइएगा नहीं, क्योंकि उनसे कहा हुआ है कि अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, वो क्या वाकया है कि एक दफा मदीना मुनव्वरा के अंदर जो गरीब सहाबा थे ना, तो मस्जिद नबी के अंदर बैठे वो निकी काम कर रहे होते थे, इबादतें कर रहे होते थे, तो दीन सीख रहे होते थे वगैरह, ठीक है ना। तो उनको सपोर्ट कौन लोग करते थे फाइनेंशियली? उनको अमीर लोग सपोर्ट करते थे, है ना। अमीर लोग जो है ना वो उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे, और उसके अलावा अमीर लोग जो है वो सदका खैरात करते रहते थे गरीबों के ऊपर। तो गरीब जो थे ना वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, हम तो गरीब हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियतें दी ही नहीं कि जिनसे कि हम अपने कारोबार के अंदर प्रॉफिट्स कमा सकें और अमीर बन सकें, है ना। भाई कोशिश तो करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक को वो सलाहियत नहीं दी होती। बिजनेस सेंस हर एक के पास नहीं होता, तो अब उसके पास जो है वो कारोबार के अंदर वो फायदे नहीं होते, ठीक है ना, उसको माल पैसा नहीं मिलता उसको। तो इन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो माल ही नहीं है जिससे कि हम सदका खैरात करते और वो सवाब कमाते जो आपने इन अमीरों को बताया कि तुम ये इतना दोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला इतना बढ़ा करके वापस करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो हम क्या करें, ये हमारा क्या कसूर है इसके अंदर कि हम सवाब से महरूम हो रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम लोग जो है ना वो जा करके अपने हल्का जिक्र के अंदर बैठो और वहां पे जाकर के 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा ला इला अल्लाहु अकबर, ठीक है, ये तुम पढ़ लिया करो, तुम्हें भी उतना ही सवाब मिल जाएगा जितना जितना के माल सदका करने का सवाब मिलता है, ठीक है। तो अब जो गरीब सहाबा थे ना वो जा करके अपना हल्का बना के बैठ गए, और बैठ करके जो है ना उन्होंने माशाल्लाह दे धनादन तस्बीह, दे धनादन तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है, कि हमें भी उतना सवाब मिल रहा है जितना के इन अमीर सहाबा को मिल रहा है, ठीक है। अब जब ये बैठे हुए जिक्र कर रहे थे ना, तो अमीर सहाबा जो थे ना वो भी वहां पे निकल आए और उन्होंने आके देखा कि ये लोग बैठे हुए जो है ना ये कुछ कर रहे हैं, सही है। तो वहां पे पहुंचे और उनसे जाके पूछा क्या कर रहे हो भाई तुम लोग। तो इन लोगों ने जो है ना, सादा लोग थे माशाल्लाह, सीधे सादे प्यारे लोग थे, राइट, इन्होंने जवाब दिया कि भाई ऐसा ऐसा था कि हमने नबी अलैहिस्सलाम से जाकर के कहा कि हमारे पास तो माल ही नहीं है, हम कैसे सदका करें, हम कैसे सवाब कमाएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये तस्बीह बता दी है कि तुम ये करोगे तो तुम्हें उतना ही सवाब मिल जाएगा। अब ये जो अमीर सहाबा थे इनके पास वक्त था, राइट, अपने ये काम काज से अपने बिजनेस से फारिग हो चुके थे, इन्होंने कहा अच्छा भाई ये तस्बीह तो हम भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी बैठ गए, इन्होंने भी ये तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, ठीक है ना। अब गरीब सहाबा देखें ये इन लोगों के दरमियान कितना खूबसूरत मुसाबिका होता था, ठीक है ना, एक आपस में इनका मुसाबिका, नेकी के अंदर मुसाबिकत करने की कोशिश करते थे, ये कोई तनाजा नहीं था, ये कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो अब गरीब साहबा ने जब ये देखा कि अमीर साहबा बैठ करके वही काम कर रहे हैं जो कि हम कर रहे थे, तो उनको भी उतना ही सवाब मिल जाएगा जितना कि हम, और उनको फिर सदका खैरात का भी सवाब मिलता है। अब ये फिर जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, ए अल्लाह के नबी, उन्होंने हमसे पूछा, हमने तो बता दिया भाई, ठीक है ना, क्योंकि इल्म को छुपाना जो है ये तो गुनाह है, तो हमने भी उनको भी बता दिया, अब वो बैठ करके भी ये काम कर रहे हैं, है ना, उनको भी सवाब मिल रहा है, सदके खैरात का भी सवाब कमा रहे हैं और तस्बीह करने का भी सवाब कमा रहे हैं। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इतना मुस्कुराहट आई आप के चेहरे मुबारक के ऊपर, आप हंसने लगे और फरमाने लगे ज़ालिका फ़ज़लुल्लाही युतीही मन यशा, है ना, ये तो अल्लाह ताला का फजल है जिसको चाहे अल्लाह ताला अता फरमाए, ठीक है। तो ऐसी खूबसूरत उनकी आपस की मामलात थे, इतना प्यारा मुआशरा नबी अलैहिस्सलाम ने इस्टेब्लिश किया था। तो भाई अल्लाह ताला जो है ना फिर जिसको चाहते हैं उसको फहमनाहा, हमने फहम दे दी, और जिसको चाहते हैं नहीं देते, ठीक है ना। तो इसका तो यही जवाब है, ठीक है। बाकी ये हिकमतें जो ऊपर आपने लिखी थी कि अल्लाह को बताना था कि सही, दोनों दोनों तरीके सही हैं, तो वो एक हिकमत है कि अल्लाह ताला जो है ना किसी को फहम देते हैं किसी को फहम नहीं देते, लेकिन दोनों को कबूल कर लेते हैं। उम्मत को ये सिखाना था कि देखो जो मेहनत करेगा ना हम उसको सवाब देंगे, जिसकी नीयत सही होगी और तरीका सही होगा और मेहनत करेगा हम उसको सवाब देंगे, हम नाराज उससे नहीं होंगे, हम उससे नाराज नहीं होंगे, हम उससे गुस्सा नहीं होंगे, ठीक है ना। हाँ सवाब में एक ज्यादा एक कम, बस इतना सही फर्क होगा, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपना अल्लाह ताला ने अपनी बादशाही भी तो हमें दिखानी होती है ना, क्योंकि मैं बादशाह हूँ, आई एम द वन हु इज मेकिंग द डिसीजंस, ठीक है ना। बहरहाल बाकी जो इन्होंने ऊपर सवाल किया था कि अगर ये डिस्कशन हो रही हो कि एक को क्यों फॉलो करें और सबको क्यों नहीं फॉलो कर सकते, तो उस डिस्कशन का पिछली क्लास में जवाब हो चुका था। तो अगर किसी को याद हो कि वो क्या जवाब था कि भाई एक ही मुज्तहिद को फॉलो करने की बात क्यों की जाती है, जब सभी सही हैं तो सबको क्यों नहीं फॉलो कर सकते, तो उसका जवाब क्या था? जो आखिरी जवाब था वो, बाकी लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए थे लेकिन आखिर में साजिश ने जो बात कही थी वो अगर किसी को याद हो। दूसरे सवाल का जवाब है कि हर कोई मुज्तहिद बनने लगा अपनी अपनी जगह, दीन मोहम्मदी के बजाय फिर हर कोई अपनी मर्जी से फैसले करेगा अगर हर मसलक को फॉलो होगा। जी बिल्कुल सही, ऐसा ही है कि दोनों पर अमल करना ऐसा ही है कि हम अपने आप को मुज्तहिद कह रहे हैं, राइट, कि हम किसी मामले में हमने इमाम अबू हनीफा के तरीके को फॉलो कर लिया। भाई क्यों फॉलो कर लिया? ये कोई खेल है? कोई दीन कोई खेल तमाशा है? जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना लिया उससे तो उनसे तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं। भाई दीन तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा को कहते हैं, है ना भाई, इत्तबा करना। अब आप किसी मामले में इमाम अबू हनीफा के सिहात को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका वो है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। और अगर आप किसी मामले में इमाम शाफी को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत तरीका था वो था जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इज्तिहाद के जरिए से बताया, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सबसे बड़े मुज्तहिद हैं, तो बड़े मुज्तहिद खुद हैं क्योंकि आप ये फैसले कर रहे हैं कि वो सही तरीका था, ये सही तरीका था, ठीक है ना। इसको तो तकब्बुर कहेंगे ना खालिसतन, और ये तकब्बुर भी ऐसा तकब्बुर है कि जो कि बगैर इल्म के तकब्बुर, राइट, अपने आप को इतना बड़ा समझना बगैर इल्म के, जबकि अल्लाह ताला तो उस तकब्बुर से नफरत करते हैं कि किसी के अंदर बहुत ज्यादा इल्म अगर आ जाए और फिर वो उस इल्म के ऊपर तकब्बुर करे, अल्लाह ताला को उस तकब्बुर से नफरत है, राइट। और फरमाया कि जन्नत में जिसके दिल में एक जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला को ऐसे तकब्बुर से नफरत है कि वाकई इल्म है और तकब्बुर कर रहा है, उससे अल्लाह को नफरत है। और ये बंदा जो अपने आप को मुज्तहिद समझ रहा है, ये तो ऐसा तकब्बुर कर रहा है कि इल्म है ही नहीं इसके पास फिर अपने आप को मुज्तहिद समझ रहा है ना। फुकहा के ऊपर तकब्बुर कर रहा है कि नहीं मैंने ज्यादा समझा है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ठीक है। ये जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये जवाब देंगे ना, जैसे इन्होंने लिखा है, इट लीड्स टू मिस गाइडेंस इफ यू फॉलो ऑल इमाम्स, मन चाहा दीन, पसंद का तरीका, ये समझ में नहीं आएगा किसी के, ठीक है ना। क्योंकि इसका जवाब पता है क्या मिलेगा? इसका जवाब अगर आप देंगे ना किसी को कि ये तो मन चाहा दीन हो जाएगा, पसंद का तरीका हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जवाब ये मिलेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल भी मन चाहा दीन पे अमल नहीं करता, है ना। इस आजिज ने बिल्कुल शुरू की बात है, जब यानी शुरू शुरू में इन चीजों को समझना समझा था तो किसी को ये जवाब दिया था कि भाई ये तो फिर ना नफ्स को फॉलो करना हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी तफसील उस वक्त हम समझा भी नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया जिनको मैंने कहा ना कि जी ये तो नफ्स परस्ती बन जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो नफ्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, मैं तो बिल्कुल नफ्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो भाई जो जो लोग ये काम करते हैं ना वो अपने आप को नफ्स परस्त मानते ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं, कि जी हम नफ्स परस्ती तो बहुत बुरी चीज है, हम कोई थोड़ी नफ्स परस्ती करते हैं, ठीक है ना। तो आपको फिर इस बात को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा और अच्छी तरीके से दलील दलील के जरिए से, अकली दलील के जरिए से समझाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर से बात करने से। इट्स राइट टू से दैट वी कैन नॉट हैव टू डायरेक्टर्स एट द सेम टाइम, इट लीड्स टू कंफ्यूजन एंड केओस। हाँ, इस मामले में आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं दो डायरेक्टर्स का, लेकिन फिर देखिएगा आगे से क्या जवाब आता है। व्हाट डू यू मीन टू टू डायरेक्टर्स? अल्लाह इज माय डायरेक्टर एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज माय डायरेक्टर। नो नो नो, इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी आर नॉट माय डायरेक्टर, है ना। वो इस किस्म के भी जवाब के लिए फिर तैयार रहिएगा, ठीक है। चलें तो थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं फिर के, इमाम शाफ सॉरी इमाम मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह, वारफ कुरान के अंदर आगे लिखते हैं कि क्योंकि हक दोनों की तरफ होने का हासिल यह है कि इज्तिहाद में खता करने वाले मुज्तहिद और उसके मुतबईन के लिए भी इज्तिहाद हक और सही है, उस पर अमल करने से उनकी निजात हो जाएगी। यानी अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे दोनों की नमाजें या दोनों के अमल जो मुज्तहिद को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक डायरेक्ट मैसेज में भी कुछ लिखा था कि जो सिर्फ कुरान को फॉलो करे चाहे वो किसी भी इमाम का हो तो क्या किसी इमाम को फॉलो करना जरूरी है? जो सिर्फ कुरान को फॉलो करे, कुरान कोई आगे आगे चल रहा है जिसको क्या पीछे पीछे तक चल के फॉलो करेंगे? कुरान को फॉलो करने का मतलब क्या है? कुरान कोई आगे आगे चल रहा है जिसके पीछे पीछे आप चलेंगी, ठीक है ना, तो कुरान को फॉलो करने का मतलब क्या है? पहले ये तो देखें ना कि मतलब क्या है। आप पता भी है कि आप क्या कह रही हैं, कुरान को फॉलो करें क्या मतलब है जो कुरान को फॉलो करने का, आप क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, तो पहले तो इस सवाल का जवाब दें कि कुरान को फॉलो करने का मतलब क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जो बात लिखी है कि चाहे वो किसी भी इमाम का हो तो भाई कुरान किसी इमाम का होता है या कुरान अल्लाह का होता है? कुरान तो सिर्फ एक ही कुरान है, अल्लाह ताला का कलाम, उसको कुरान कहते हैं, ठीक है ना, तो कुरान तो एक ही है, इमाम का कुरान भी थोड़ी होता है कोई, सही है, कुरान तो एक ही है, ठीक है ना भाई। अब इसका जवाब देंगे कुरान को फॉलो करने का मतलब क्या होता है। अच्छा, दूसरा आपने क्या लिखा है कि क्या किसी इमाम को फॉलो करना जरूरी है? नहीं, इमाम को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इमाम को फॉलो करना, ठीक है ना, आप खुद इमाम बन जाइए, आप खुद इमाम बन जाइए, फिर आपको फॉलो, आपको किसी दूसरे इमाम को फॉलो करने की जरूरत नहीं, बल्कि लोग आपको फॉलो करेंगे क्योंकि आप इमाम बन गए, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप इमाम नहीं बनी तो फिर किसको फॉलो करेंगे भाई? किसी को फॉलो नहीं करेंगी, मैं इमाम भी नहीं हूं और मैं किसी को फॉलो भी नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो हमारे मशाइख जो है ना इसके ऊपर फिर बड़ी सख्त बात कहते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो किसी इमाम को फॉलो नहीं करता तो उसका इमाम एक छुपा हुआ इमाम होता है, एक छुपे हुए साहब होते हैं, वो असल में उसका इमाम होता है, यानी ये खुद भी इमाम नहीं है और किसी दूसरे इमाम को भी फॉलो नहीं कर रही, ठीक है ना। फिर इसका जो इमाम है, इसका जो इमाम है ना, वो एक छुपी हुई चीज होती है, पीछे से वसवसे डालती है। अब आपने लिखा कि कुरान को फॉलो करने का मतलब ये है, मतलब तर्जुमे की इमाम करते हैं ना, तर्जुम की इमाम करते हैं, आपको तो उर्दू भी लिखना नहीं आ रही तो आपने क्या किसी को फॉलो करना, ठीक नहीं ना भाई। कुरान को फॉलो करने का मतलब ये है कि जिस जिस बंदे ने, जिस इंसान ने कुरान मजीद से जो फिकही उसूल अखज किए हैं, कुरान मजीद के तर्जुमे, तर्जुमा भाई पहली बात यह है कि इमाम कैसा है जिसको के तर्जुमे की जरूरत पड़े भाई। इमाम तो उसी वक्त कहलाने के काबिल होगा ना जब उसको अरबी जुबान आती है ना भाई। तो कुरान मजीद को समझ करके उसने उसमें से फिर आपको बताया कि भाई कुरान मजीद का ये मतलब है, कुरान मजीद की इस आयत का ये मतलब है, कुरान मजीद की इस आयत का ये मतलब है, ठीक है ना। तो कुरान मजीद को फॉलो करने का मतलब ये है कि जिसने उसको समझा है आप उसकी समझ को फॉलो कर रही हैं, ठीक है ना, या आप खुद ही जो है वो कुरान मजीद का तर्जुमा कर पढ़ रही हैं और फिर अपनी समझ को फॉलो कर रही हैं, क्या करना क्या चाहते हैं? देखें, दिस इज टोटल कन्फ्यूजन, टोटल कन्फ्यूजन, आपको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। कुरान मजीद को जिसने समझा है और फिर उसने समझ बताई है कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आप जो है वो उसको फॉलो कर रही है ना भाई। अल्लाह ताला की आवाज तो नहीं आई ना, अल्लाह ताला की आवाज आई कभी आपके पास कि मेरे कुरान मजीद की इस वाली आयत के अंदर मेरा ये मतलब था? कभी सुना अल्लाह ताला की आवाज को? राइट, ना आपने सुना ना इमाम साहब ने सुना, ठीक है ना भाई। नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के जरिए से उन्होंने उसको तहकीक करी, उसको समझा, फिर उससे जो है वो कुरान मजीद के मफहूम को समझा, फिर उन्होंने अपनी किसी तफसीर के अंदर जो है वो उसके मानी बयान करे, है ना। तो कुरान को फॉलो करने का मतलब क्या होता है कि जिस इमाम ने उसको समझा और उसकी तफसीर बयान करी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यही तो हम भी बोल रहे हैं भाई, इमाम को फॉलो करो भाई, या खुद इमाम बन जाए, जाए जाकर के पीएचडी करें कुरान मजीद की अरबी के अंदर और हदीस मुबारका के अंदर जाकर के, आजकल पीएचडी करें जाकर के, जो भी करें राइट, फिर इमाम बन जाए, फिर उसके बाद जो है वो खुद से फैसले करें। इसी को कहते हैं मुज्तहिद बन जाए, इमाम बन जाए का मतलब मुज्तहिद बन जाए, फिर किसी को फॉलो ना करें, ठीक है ना। लेकिन जब तक नहीं बनी हुई है तो भाई उस वक्त तक अपने आप को जरा थोड़ा सा लोअर कर लें, थोड़ा सा झुका लें, ठीक है, और जो मुज्तहिद हैं उनको फॉलो कर लें, खुद जो है वो अपने लिए इज्तिहाद के फैसले ना करें कि मैं खुद मुज्तहिद बन गई हूँ और मैं जो हूँ वो खुद से इज्तिहाद करूंगी कि कौन सही था कौन गलत था, क्या सुन्नत थी क्या सुन्नत नहीं थी, और कुछ पढ़ पढ़ा तो नहीं पहले, उसके बाद फिर देखिएगा, ठीक है। चले, ख्वाह ये इज्तिहाद अपनी जात में खता ही हो, यानी जो फॉलोअर्स हैं उनको सवाब मिलेगा, ख्वाह मुज्तहिद का इज्तिहाद जो है वो अपनी जात में यानी अपना वो खता ही क्यों ना हो, मगर इस पर अमल करने वालों को कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है ना। ना मुज्तहिद को कोई गुनाह हुआ, ना अमल करने वालों को कोई गुनाह होगा। और जिन हजरात ने ये फरमाया है कि हक उन दोनों में एक ही है, दूसरा गलत और खता है, उसका हासिल भी इससे ज्यादा नहीं कि असल मुराद तो हक ताला और मतलूब खुदावंदी तक ना पहुंचने की वजह से इस मुज्तहिद के सवाब में कमी आ जाएगी, यानी दो की बजाय एक सवाब मिल जाएगा, और ये कमी इस वजह से है कि उसका इज्तिहाद हक बात तक ना पहुंचा। लेकिन ये मतलब उनका भी नहीं है कि मुज्तहिद खाती यानी खता करने वाले मुज्तहिद पर कोई मलामत होगी या उसके मुत्तबईन को गुनाहगार कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी कोई भी उलमा जो है वो ये नहीं कहते कि जिस मुज्तहिद ने अपने इज्तिहाद में खता कर ली, गलती कर ली, तो उसको गुनाह मिले, कोई भी ये नहीं कह सकता और कहते ही कोई नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल बहुत डिस्कशन होगी इस टॉपिक के ऊपर, आप आगे चलते हैं। तफसीर कुर्तुबी में इस मुकाम पर इन तमाम मबाहिस को पूरी तफसील से लिखा है, अहले इल्म वहां देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक खामखा की डिस्कशन में 20वीं सदी के अंदर मुसलमानों को झोंक दिया गया है ना कि कुरान को फॉलो करो या डायरेक्टली हदीस को फॉलो करो और इमाम की जो है ना वो फॉलो ना करो, ये एक बेवकूफी की बहस है, और ये इसमें उम्मत को झोंकने की कोशिश ही इसलिए की गई है कि उम्मत जो है ना वो अपने करने के काम छोड़ दे और जो उसके करने के काम नहीं थे ना वो करने की कोशिश शुरू कर दे, ताकि जो है वो बर्बाद हो जाए, मजीद मजीद खराब हो जाए, दीन से मजीद दूर हो जाए, ठीक है ना। ये असल वजह इस डिस्कशन की ये है, ठीक है ना। अब जो है वो जो दीनदार बनता तो उसको जो है ना बजाय इसके कि वो दीन पे अमल करे, अपने इखलाक संवारे, झूठ से तौबा करे, गुनाहों से तौबा करे, उसको इस बहस के अंदर लगा दिया, इस फिक्र के अंदर लगा दिया कि तुम इज्तिहाद करो, कुरान मजीद को डायरेक्टली पढ़ो और हदीस को पढ़ो और ये मालूम करो कि हाथ किधर बांधना है। अल्लाह के बंदे, हाथ बांधना जो है वो जब मुज्तहिदीन ने फैसला कर लिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो खुदा के बंदे हाथ बांध दो इस तरीके से यार, और तुम जो दूसरे काम करने हैं वो करो जो कि तुम्हारे करने के काम है, जिसका तुम्हारे पास इल्म है, जिसकी तुम्हारे पास समझ है, वो वाले काम करो, राइट। लेकिन शैतान जो है ना वो तो चाहता ही है कि हम वो काम ना करें जिसकी हमारे पास समझ है, हमारे पास इल्म है, बल्कि वो काम उस काम में लग जाए जिसका कि हमारे पास समझ ही कोई नहीं है, ठीक है ना, ताकि हमारा हमारी जिंदगी जाया हो जाए, बर्बाद हो जाए हमारी जिंदगी, ठीक है ना। तो ये सारी बहस जो है ना वो असल में इसकी वजह ये है, ठीक है। क़यामत के दिन इंसान अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा जिसे फॉलो करते हैं, जी जिसे फॉलो करते हैं, तो अच्छे इमाम पहले चेक कर लें कि आप किस इमाम को फॉलो कर रहे हैं, कि ऐसी जो है वो किसी बिदती इमाम को उठा करके फॉलो ना करना शुरू हो जाएगा, वरना क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाएंगे, ठीक है। किसी ने ये भी सवाल किया था कि चार इमाम क्यों, कोई और इमाम क्यों नहीं बन सका, इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब तो बहुत दफा आप सुन चुके होंगे, अलजी दाम का जवाब दे चुके हैं, इसका कई दफा जवाब दे चुके हैं कि भाई बहुत सारे मुज्तहिद थे लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी कहेंगे इसको कि वक्त के साथ साथ जो है वो उम्मत में बाकी मुज्तहिदीन जो है वो मकबूल नहीं हुए और सिर्फ चार जो है ना वो मकबूल होके रह गए, बाकी रह गए, ठीक है ना, चार बाकी रह गए, तो अब इस वजह से जो है वो उन्हीं चार के दरमियान उम्मत की फॉलोइंग चल रही है, ठीक है, इसमें इसमें कोई क्या मसला है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसकी मिसाल कैसे देते हैं कि किसी शख्स का जब इंतकाल हुआ, ठीक है, तो उसके जो है ना वो चार बेटे जिंदा थे, वैसे तो उसके 10 बेटे थे, लेकिन 6 का उसकी जिंदगी में इंतकाल हो गया था और बाकी जो है वो सिर्फ 4 रह गए थे। तो अब जब उसके इंतकाल के बाद उसकी विरासत तकसीम की जाएगी तो 10 में नहीं तकसीम की जाएगी बल्कि 4 में तकसीम की जाएगी, क्योंकि 4 जिंदा थे उस वक्त जब उसका इंतकाल हुआ था, ठीक है। तो अब ये अल्लाह की मर्जी है ना कि 6 जो है वो उसकी जिंदगी में ही फौत हो गए, ठीक है ना भाई। इसी तरीके से अल्लाह की मर्जी है कि बाकी जो मुज्तहिदीन थे, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इज्तिहाद के दर्जे पे फायज थे, और भी इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को भी जो है वो अपने जमाने का मुज्तहिद कहा जाता है, लेकिन जो उम्मत के अंदर मकबूलियत आगे चलती रही वो अल्लाह की तरफ से दिल के अंदर, दिलों में अल्लाह ताला ने डाला कि बस यही 4, ठीक है ना, इन्हीं 4ों के फॉलोअर्स बाकी रह गए, ठीक है ना। तो बस जिनके फॉलोअर्स बाकी रह गए वही जो चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका बस इतना ही जवाब है, इससे आगे और कोई मंतकी जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे ये मसला फकीहा कि अगर किसी जानवर, किसी के जानवर दूसरे आदमी की जान या माल को नुकसान पहुंचाए तो फैसला क्या होना चाहिए? अब ये आ गया वापस वही दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम वाले मामले के ऊपर, ठीक है। तो उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि तफसील तो पढ़नी है ना हमने। फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले से तो ये साबित होता है कि जानवर के मालिक पर जमान आएगा, यानी उसके ऊपर पेनल्टी आएगी, ठीक है, कि भाई उसके जानवरों ने जाकर के खेत को खराब कर दिया था, उसके ऊपर पेनल्टी आनी चाहिए, जमान उसको कहते हैं पता की जुबान में। अगर ये वाकया रात में, यानी सॉरी, दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले तो ये साबित होता है कि जानवर के मालिक का जमान आएगा अगर ये वाकया रात में हुआ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत का जो फैसला हो वही शरीयत मुहम्मदिया में भी रहे, इसलिए इस मसले में आइम्मा मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ है, ठीक है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत, यानी उनके जमाने में जो अल्लाह ताला ने फिकही उसूल नाजिल किए थे ना, तो उसमें एक उसूल यह था कि अगर रात के वक्त इस तरह का मामला होगा तो तब जो है ना वो जानवर का मालिक जमान देगा, यानी पेनल्टी देगा, ठीक है। तो क्या शरीयत मुहम्मदिया में भी यही उसूल फॉलो किया जाएगा? तो उसका हजरत जवाब दे रहे हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि उस शरीयत में जो फैसला था वही इस शरीयत में भी फैसला हो। मिसाल के तौर पर हमारी शरीयत के अंदर कितनी नमाजें हैं, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में कितनी नमाजें हैं? दिन में 5, ठीक है ना। अब इससे पहले जो इब्राहिमी चेन के अंदर जो 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 अंबिया थे तो उनमें कितनी नमाजें थी? उनमें 5 नहीं थी, उनमें 2 नमाजें थी जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फर्ज की थी, और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वही 2 नमाजें चल रही थी बनी इसराइल में, ठीक है ना, क्योंकि वही थे अहले किताब, तो उनमें 2 नमाजें चल रही थी, तो उनकी शरीयत जो थी वो 2 नमाजों वाली शरीयत थी, हमारी शरीयत जो है वो 5 नमाजों वाली शरीयत है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस है ना शरीयतों में, ये तो मौजूद हैं, अकीदे में कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन इबादतों में डिफरेंस है, उसी तरीके से फिकही मामलात के अंदर भी डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल, ठीक है, यानी एक तो इबादत वाली मिसाल हो गई, एक जो है वो कुर्बानी वाली मिसाल, ठीक है ना। ये जो मशहूर मिसालें हैं कि कुर्बानी का क्या तरीका होता था, उनकी शरीयत में क्या तरीका होता था कि कुर्बानी करके उसको जो है वो किसी जगह पे रख दिया जाता था, बाकायदा आसमान से आग आती थी और वो आग आकर के उस कुर्बानी को जला देती थी, ये उस कुर्बानी के कबूलियत की निशानी होती थी, ठीक है ना। इस उम्मत के अंदर कुर्बानी करके कहीं नहीं रखते, बल्कि उसकी खाल उतारते हैं, खाल भी इस्तेमाल करते हैं, ओजड़े भी इस्तेमाल करते हैं, और गोश्त माशाल्लाह मजे से खाते हैं, राइट। तो कुर्बानी फिर किस चीज की हुई? कुर्बानी सिर्फ माल की कुर्बानी हुई जो आपने उस जानवर को खरीदने में इस्तेमाल किया था, है ना। और फिर कबूलियत जो है वो कयामत के दिन पता चलेगी, यहाँ भी कबूल हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो शरीयत के अंदर डिफरेंसेस हो गए। उस उम्मत के, यानी पिछली उम्मतों के अंदर जिहाद में जो माल गनीमत आता था, उस माल गनीमत को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और इस उम्मत के अंदर जो माल गनीमत आता है जिहाद में, उसको उम्मत के अंदर बांट दिया जाता है। यानी ये सब शरीयत के डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये बाकायदा लॉ लीगल डिफरेंसेस हैं इस उम्मत में और पिछली उम्मतों के दरमियान, ठीक है। अकीदे का कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है कि जी पिछली उम्मतें जो है वो फरिश्तों को नहीं मानती थी, हम जो है फरिश्तों को भी मानते हैं। नहीं, फरिश्तों के ऊपर ईमान उधर भी और इधर भी, अल्लाह पर ईमान, तकदीर पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, राइट, ये सारा का सारा जो है वो सेम है, लेकिन जो जो फिक्री उसूल हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अल्लाह ने रखे हैं, अल्लाह की मर्जी है भाई। तो इसी तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत का जो फैसला हो, जरूरी नहीं है कि वही शरीयत मुहम्मदिया में भी रहे। इसीलिए इस मसले में आइमा मुश्तहिदीन का इख्तिलाफ है। ठीक है, हाँ ये है कि कुछ चीजें जो पहले थी वही आगे भी कंटिन्यू हुई, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज भी हो गई। तो अब आइमा मुश्तहिदीन फिर आपस में डिस्कशन करते हैं कि जी क्या है क्या नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसला ये है कि अगर रात के वक्त किसी के जानवर दूसरे के खेत में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाएं तो जानवर के मालिक पर जमान आएगा, और अगर दिन में ऐसा हो तो जमान नहीं आएगा। उनका इस्तदलाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले से भी हो सकता है, मगर यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही फैसला किया ना कि रात के वक्त वो आकर के चर गए थे इनके खेत के अंदर, तो पेनल्टी दे दी थी। मगर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल के तहत उन्होंने एक हदीस से इस्तदलाल फरमाया है जो मुअत्ता इमाम मालिक में मुरसलन मनकूल है, कि हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह अन्हु की नाका, नाका जो है वो फीमेल ऊँटनी को कहते हैं, एक शख्स के बाग में दाखिल हो गई और उसको नुकसान पहुंचा दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि बागों और खेतों की हिफाजत रात में उनके मालिकों के जिम्मे है, और उनकी हिफाजत के बावजूद अगर रात को किसी के जानवर नुकसान पहुंचा दे तो जानवर के मालिक पर जमान है। ठीक है, और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और फुकहाए कूफा का मतलब यह है कि जिस वक्त जानवरों के साथ उनका चराने वाला या हिफाजत करने वाला कोई आदमी मौजूद हो, उसने गफलत की और जानवरों ने किसी के बाग या खेत को नुकसान पहुंचा दिया, इस सूरत में तो जानवर के मालिक पर जमान आता है, ख्वाह ये मामला रात में हो या दिन में। और अगर मालिक या मुहाफिज जानवरों के साथ ना हो, जानवर खुद ही निकल गए और किसी के खेत को नुकसान पहुंचा दिया, तो जानवर के मालिक पर जमान नहीं, मामला दिन और रात का इसमें इसमें भी बराबर है। ठीक है ना, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद ये है कि बस अगर मालिक थे जानवरों के साथ और उन्होंने जानवरों को नहीं रोका तब तो उनके ऊपर जमान आएगा, लेकिन अगर मालिक नहीं है और जानवर वैसे ही चल रहे थे और वो फिर किसी के चरागाह के अंदर दाखिल हो गए और वहां पे उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया तो फिर जमान नहीं आएगा, पेनल्टी नहीं होगी। ठीक है ना, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। फुकहाए कूफा का मतलब वही जो 40 इमामों की काउंसिल थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर के, ठीक है ना, तो वही फुकहाए कूफा वगैरह शामिल कहला, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो कूफी कूफी थे, कूफा में रहते थे। ठीक है, अच्छा अब इमाम आजम की दलील क्या है? देखिए, ऊपर इमाम शाफी की दलील हदीस ही थी, नबी अलैहि सलाम की बात थी, ठीक है ना, उनका अपना कोई यानी अपने ख्वाब के बेस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया था, इशारा नहीं किया था, बल्कि दलील हदीस मुबारक ही थी उनके पास भी, और यहाँ पर भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास जो दलील है वो भी हदीस मुबारक ही है। तो फरमाना है कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह की दलील वो हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम और तमाम मुहद्दिसीन ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जराहल उजमा जब्बारुन, यानी जानवर जो किसी को नुकसान पहुंचाए वो काबिले मुआखजा नहीं है, यानी जानवर के मालिक पर उसका जमान नहीं है, बशर्ते कि जानवर का मालिक या मुहाफिज उसके साथ ना हो, जैसा कि दूसरे दलाइल से साबित है। ठीक है, इस हदीस में दिन रात की तफरीक के बगैर आम कानून शरई ये करार दिया गया है कि अगर जानवर के मालिक ने खुद अपने कसद व इरादे से किसी के खेत में नहीं छोड़ा बल्कि जानवर भाग कर चला गया था तो उसके नुकसान का जमान जानवर के मालिक पर नहीं होगा। और हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकये की रिवायत की सनद में फुकाए हनफिया ने कराम किया है और फरमाया कि उसको सहीहैन की हदीस मजकूर के मुकाबले में हुज्जत नहीं करार दिया जा सकता। ठीक ना, अब देखें ये तरीका होता है फिकही जो इज्तिहाद किया जाता है ना, तो ना सिर्फ ये कि अपने इज्तिहाद की दलील के तौर पर कोई हदीस पेश करते हैं, बल्कि अगर दूसरे मुज्तहिद का इज्तिहाद मुख्तलिफ था तो उसके रद्द में भी कोई दलील पेश करते हैं कि भाई हम क्यों उनके इज्तिहाद से इत्तेफाक नहीं कर रहे, क्यों उनको एग्री नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी उसका भी जवाब दिया है कि इमाम शाफी के इज्तिहाद से हम इसलिए मुत्तफिक नहीं है क्योंकि उन्होंने जो दलील पेश करी है ना हदीस मुबारका, वो हदीस मुबारका जो है ना वो हमारे नजदीक थोड़ी सी उस हदीस मुबारका की सेहत में झोल है, थोड़ी कमजोर हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो हदीस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हदीस है, पक्की बात है कि नबी रसूल सलाम ने ऐसे ऐसे किया था, जबकि उनके पास जो हदीस है उसमें थोड़ा सा एहतमाल है कि शायद कुछ गलती हो गई उस हदीस के अंदर, ठीक है। इस वजह से हम उनके इज्तिहाद से इत्तेफाक नहीं करते, हमारा ये इज्तिहाद है, ठीक है। चलिए, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है और ये वाली जो डिस्कशन है वो वैसे भी हमारी इस क्लास का असल टॉपिक है नहीं, ये तो फिका की क्लास, या जब आप उसूल फिका, उसूल तफसीर वगैरह पढ़ेंगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप ये सारी चीजें तफसीर के साथ पढ़ लेंगी। वल्लाह सुभानहु तआला आलम। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।